गिर जाओगे। क्या करो, कुछ अन्य ग्रंथ हमारे गुरुवर्गों के, भगवत गीता रामायण, जहां मन लगता है वहीं शुरू करो पढ़ना, अध्ययन करना। अध्ययन करने से क्या होगा, उसके अंदर में प्रवेश कर गए, कहां पहुंच गए, भगवत चरणारविंद में। ये मत समझना कि मैं अन्यत्र हूं, क्यों, मन तो अविष्ट हो गया, रामलीला रामायण पढ़ रहे, ऐसे रामलीला में तन्मय हो गए, भूल गए खाना पीना घर बार दुनियादारी देह की शुद्ध बुद्धि, तो कहां पहुंच गए, तो राम अजीता रामलीला में। ऐसे कृष्ण के भागवत में कोई गोस्वामी ग्रंथ में जब आप अध्ययन करेंगे गहन रूप से, तो धीरे 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 उनके नजदीक जाते 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 विषय छूटेगा, आपके हृदय निर्मल हो जाएगा, आप प्रवेश कर जाएंगे। भक्तम ठाकुर बड़े दयालु थे, क्या करते थे, अपने पैसे से मेहनत करके जो कमाई करते एक चौथाई भी संसार के लिए नहीं खर्च करते, एक तिहाई पैसे से ग्रंथ छपाना और ग्रंथ लाना, बांटना सबको, नाम महिमा है और क्या, एकादशी की महिमा, पहले शुरू शुरू में छोटी छोटी किताबें, विजन राम सन्यासी, प्रेम प्रदीप है, नवदीप भाव तरंग है, ये सब छोटे 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 छोटे, कल्याण कल्पतरु, शरणागति है, जवन भावावली, छोटे छोटे ग्रंथों को प्रकाशन करना शुरू कर दी। समस्त जीव को कीर्तन सब प्यार करते, ऐसे कीर्तन किया भागवत के श्लोकों को अनुवाद करके, वेदांत उपनिषद के श्लोकों को जो साधारण जीव नहीं समझ सकते, सब लोग कीर्तन करने लग गए, कीर्तन में तन्मय हो जाते, महामंत्र करके पंच तत्व करके प्रभुपाद शक्ति ठाकुर को उन्होंने समस्त ग्रंथ संस्कृत, उस समय अनुवाद नहीं था, कोई बंगला में या हिंदी में इसे अनुवाद, केवल संस्कृत की समस्त ग्रंथ एक एक करके लाने लगे, और प्रभुपाद उसका अध्ययन करते, जहां जहां जो कुछ होता सब निशान भक्तवृंद ठाकुर की आलोचना करते, भक्तवृंद ठाकुर उत्साह देख करके बहुत खुश हो गए। फिर इनको कलकत्ता में बोले तुम नहीं पढ़ाई करो, भक्तवृंद ठाकुर राम भवन में आ गए कलकत्ता में, वहां पर भक्ति कुटी वहां रहते, वहां सत्संग शुरू कर दी कलकत्ता विभिन्न जगहों में, आस पास में सब जगहों में, जब उड़ीसा से आना पड़ा उनको कार्यभार से, अब यहाँ पर आकर के यहाँ शुरू कर दिया। उस समय प्रभुपाद कॉलेज में पढ़ते, अब पढ़ते पढ़ते ज्योति न्याय और क्या तर्क जितने प्रकार के उस समय के थे, दर्शन शास्त्र सब में सबसे उत्तम उन्नत सिंह में पहुंचे। अब धीरे 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 ऐसा हुआ, कॉलेज के प्रिंसिपल सब लोग बोलने लगे, ये जो ज्योतिष शास्त्र के जो पद है ये आपके लिए रिक्त है, आप इसको स्वीकार कीजिए, ऐसे बड़ा ज्योतिषी तो इतना बड़ा भाई अनुभव व्यक्ति आज तक देखा नहीं गया। तो क्या बोलते हैं, मैं आकाश के तारा गिनने और जमीन में बालू गिनने के लिए मैं नहीं आया, मेरा कुछ और काम है, ये काम मैं के लिए नहीं आया, तो बोला आप जब तक रहेंगे ये सब खाली रहेगा आपके लिए, आप स्वीकार कीजिए इस पद को। प्रभुपाद जी ने स्वीकार नहीं किया, अब क्या किया भक्तवृंद ठाकुर जी, देखा कि बच्चा तो बड़ा हो गया, इसको तो कुछ काम देना है या करना है, इन्होंने क्या की उनको बीच में बहुत आते हैं छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर, क्या
किया,
तो क्या किया इन्होंने, उस समय जब पुरी में थे उनके एक बड़ा भाई वो सुंदर थे योग्य व्यक्ति, किंतु एक दिन बहुत बीमार पड़ा, इतना बीमार और बुखार और कान सिल में आए, माँ को बुला रहे हैं, भगवत जी भी आई आकर के, क्या बात है इसलिए कष्ट, क्या कष्ट है, डॉक्टर बुलाया, दवाई दिया, वो जो कुछ किया जगन्नाथ के चरणा में दिया सब कुछ किया, किंतु स्वस्थ होने के लक्षण नहीं है। तो क्या बोलते हैं, माँ मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने पूर्व जन्म में इसी जन्म में मैं रावण संप्रदाय वैष्णव था और गौड़ी संप्रदाय को बहुत मैं घृणा किया, बहुत अवज्ञा किया, उसके परिणाम स्वरूप जब मेरा उद्धार तो हुआ नहीं, जन्म तो मिला और ये आपके घर में ये महाभागवत, ये विमला प्रसाद है, ये गौड़ी संप्रदाय के उन्नत वैष्णव है, ये महाभागवत है, इनके चरणामृत चरण मेरे को धोकर के दो, और जब मेरे को शांति मिलेगा। ऐसा कहते कहते उनके सारा शरीर में रामानुजी तिलक स्वस्थ निकल आए और क्या किया, वो छोटा है किंतु फिर भी उन्हें चरण धो करके जब चरणा में दिया, बस वो चरणा को पा करके शरीर को छोड़ करके बिल्कुल उद्धार पा करके चले गए। जाने के पहले रूपा जी की बहुत गुण महिमा अपने मुख से विस्तार करके और सब स्तुति करते करते गौड़ीय संप्रदाय की गौड़ीय परंपरा की अपने शरीर को छोड़ा। तब से भक्तों को ऐसे भी समझते सब लोग ही बहुत श्रद्धा हो गई। अब प्रोपार जबकि थोड़ा कलकत्ता से पढ़ाई क्या को इस तरफ कर दी, सब समय अध्ययन रहते और वो उन्हें पढ़ते पढ़ते एक नए अक्षर की आविष्कार की थी, जैसे अंग्रेजी में है, हिंदी में है, उड़िया में है, ऐसे नए अक्षर और नया भाषा नया आविष्कार कर दी। किंतु क्या हुआ उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा कड़ा शासन, सदन रूप में कोई चीज नए रूप में होना बड़ा कठिन था। तो वो उसको मैंने बहुत बार सुना महाराज से और सब से, तो रखी हुई थी बहुत दिन तक, कहाँ गए थे पीछे पता नहीं, क्षेत्र मठ की गड़बड़ी में। तो क्या हुआ फिर उनको भक्तन ठाकुर जी भेज दिए, कहाँ त्रिपुरा राजा की यहाँ। जब राजा की यहाँ भेज दिया, राजघराना में एक लड़का उसको पढ़ाने के लिए, तो तुम वहां गए किंतु उन्होंने प्रभुपाद जी संतुष्ट हो गए जाके, क्या देखा राजा वैष्णव, और राजा की लाइब्रेरी में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो नहीं है, विश्व के समस्त ग्रंथ है। महाराज जी क्या करते हैं, मैं अभी भी देखता हूँ, कोई भी मायावादी सहजिया कर्मी ज्ञानी कोई किताब होता खरीद देते जा रहे हैं, हमारे गुरु महाराज भेजते हैं किताब में मेरे में भेज देते हैं, जाओ जितना ग्रंथ है नहीं है अभी लास्ट रीच भेजा। बाबा रे कितना ग्रंथ, उन्होंने कहां से इतना नाम याद है, वो प्राण कृष्ण ले आए कितना ब्लेस, हम तो नाम पढ़ते पढ़ते हम थक गए, इतना उनको याद है बाबा। तो वो लोग ग्रंथ याद कैसे करते, तो बैठे 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 सारा दिन ग्रंथों का अध्ययन करते और वो बच्चे को भी पढ़ा। किंतु प्रभाव क्या हुआ, जैसे प्रतिपुंस मनिवश सतत गुण सकलो दे सतमान सज जानने का संशय, वो बच्चे का संग रूपा जी की हुई और भ्रम चढ़ गया। और बच्चे क्या होने लगा, धीरे 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 तिलक करने लग गए, एकादशी करने लगा, हरिनाम करने लगे, चोटी रखने लगे, और माँ से माँ नहीं कहते और बाप से बाप नहीं कहते, पास में जाते नहीं। और राजा रानी का एक लड़का, राजा तो सख्त है, रानी बड़े दुखी हुए, रानी बोलती क्या और कहाँ से ले आए बाबा जी, ये साधु कहाँ से ले आए, ये साधु तो गड़बड़ कर दी, एक लड़का है उसको बिगाड़ दी, अब क्या होगा, राज्य कौन देगा, हम माँ हैं, हम हमसे भी नहीं बात करेगा, और माँ को सब जला खाता नहीं, किसी के पास रहता नहीं, बैठता है नहीं, ये क्या हो गया, रोने लग गई, यदि साधु को नहीं अपने भेजा हटाया तो मैं बिना खाई की मैं मर जाऊंगा, ये जी कर ली। महाराज ये बड़ा गड़बड़ होगा, बड़े नम्र होकर के प्रभुपाद जी को आकर के निवेदन किया, हे प्रभु हे दयाल, आपको मैं जो तनख्वाह देता उसे डबल तनख्वाह दे दूंगा, आप अपना कलकत्ता चले जाएंगे, आपकी तनख्वाह हम महीना महीना भेज दिया करेंगे। प्रभुपाद बोले बोला अच्छा हुआ, इस विषय का संग छूटा, कम से कम प्रभुपाद वहां से आए बोला आपकी तनख्वाह की जरूरत नहीं, मैं तनख्वाह लेने नहीं आया, प्रभु की इच्छा से उस प्रभु ने मेरे को कार्यमान से भेजा। उस समय मैं उनके शिष्यों के मुख से सुना कि रामानुज संप्रदाय में आचार्य रामानुज के निकट किसने प्रार्थना की, एक लड़की ने, शिष्य गुरुदेव मैं आपके पास एक प्रार्थना करती हूँ। तो क्या प्रार्थना, गुरुदेव मेरे पिताजी ने मुझे शादी की, किंतु शादी दिया कहाँ, बहुत दूर देश में, जहां पर पानी धो के लाना पड़ता है करीब करीब 10-12 किलोमीटर दूर से, और मैं नहीं गई, हमारे साथ कोई नौकर नहीं, तो पानी भी धो के लाऊं, रस्ते भी बनाऊं, सभी कपड़ा धो पैर दाबू, उसके बाद मैं थक जाती हूँ और नहीं कर पाती हूँ तो मारा पीटी करते हैं और बोलते जा तेरे बाप के नौकर ला, नहीं कर सकती थी। तो मैं क्या करूं, मैं पिताजी घर आती हूं तो पिताजी घर ही गए, पिताजी क्या करें, वो भजन में मस्त हैं। तो मैं कहता गुरु जी आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं, आप मुझे अपने सहारा दीजिए। इतने में पिताजी ने क्या कहा, रावण पिताजी ने बुलाया अपने सेवक को, जो प्रधान सेवक जो उनकी सेवा करते हैं, ना कर बेटा इधर आओ, है तो जाओ, कहाँ इनके घर जाओ और इनके घर में जो कुछ ये कहती है सब कुछ करना। बस कहते रामन से आचार्य ने लड़की सती गए और वहां जाकर के क्या करते हैं, उनके घर में रस्ते भी बनाते हैं, पानी भी धोते हैं, घर साफ करते हैं, सबके कपड़ा धोते हैं और जिस जिस की जरूरत है इसमें डालते हैं। घर वाले क्या जानते हैं, ये तो नौकर दिया, ये लड़की वापस जाकर नौकर लाया, जितने काम नहीं होता खाने पीने को क्या जूठन बच गया तो दे दिया, अब माँ प्रसाद भी नहीं दूसरे का जूठन, और जैसे जैसे जो कुछ मिला सब दे दिया, जैसे भी गुजारा करते हैं, कपड़ा पहनने को नहीं तो सीख रहा। ऐसे रहते रहते कुछ बहुत दिन बीत चुका, इतने एक दिन क्या किया, उस गांव के बाहर बड़ा भारी मायावादी सन्यासी आए और बहुत मीटिंग हो रहा था, मतलब वो भक्ति का भाषण हो रहे हैं और मायावादियों की सभा हो रही है, बड़बड़े आए उसमें। ये पानी भरने गए घड़ा कंधा में और खड़े से सुन रहे थे, इतने में सुनते सुनते क्यों विचार सिद्धांत गुरु की सेवा सौंपने पर शक्ति है, सामने गए जाकर बोलते हैं आचार्य देव आपने ये जो भाषण दिया वक्तव्य दिया यदि आप कहें तो मैं उसमें कुछ मैं भी कुछ बोलूं, किंतु साधारण लोगों को तो बोलने नहीं देंगे, किंतु प्रभाव है ना गुरुत्व है। बस उन्होंने बोला ठीक है आप जो कुछ बोलना चाहते हैं बोल, कुछ कह सकते हैं। ये उठे आसन में और सबको प्रणाम और वंदना करके भाषण देना शुरू कर दिया। ऐसे भाषण दिया वो जो मायावादी स्टेज में थे वो मायावादी सन्यासी तो दूर रहे, जितने श्रोता हजारों की संख्या में सब श्रोता लोग जय जयकार करने लगे। ऐसे सुन तो अब तक हमने सुना नहीं, अब भाषण का प्रतिभा और गुरु की कृपा सेवा का उत्कृष्ट सब लोग आकृष्ट हुए। उस समय उनके घर वाले बोलते हैं ये जो हमारे घर में नौकर है ये भाषण दे रहा है, वो भी वहां मौजूद थे, इतना बड़ा महामहिम पंडित और विद्वान साधु, उसको हमारे घर में हम लोगों ने ऐसे नौकर बना के रखा। जैसे लड़की को पूछते हैं तुम्हें कहां से इसको पकड़ लिया है, तो आप लोग मुझे कष्ट दे रहे थे सता रहे थे, मैं क्या करती, मैं अपने गुरु जी की प्रार्थना की, गुरु जी ने अपने सेवक को दे दी, ये लोग आए चरणों को पकड़ लिया, हम लोगों ने गलती किया क्षमा कर दीजिए, जितना गलती हुई है हम नानजान में जो कुछ अन्याय किया क्षमा कर दीजिए। बहुत रोने लगे प्रार्थना करने लगे और सब लोग मिलकर के रामानुजाचार्य के पास गए, ये आपने क्या कर दिया, आप अपने सेवक को बुला लीजिए, हम लोग विषय भोगी मदांध हम लोग नहीं समझे कुछ, बहुत अन्याय किया प्रभु, ये भगवत चरण में अपराध हुआ है। देखो हम लोग जगत में दुख कब पाते हैं, जब मौत चरण में अवज्ञा होती है, मौत तो हृदय में भगवान है, भगवान अपराध हो जाता है उस समय जीवों को पीड़ा मिलता है या नहीं तो संसार दशा होता है, अर्थात माया में जाकर के सुंदर स्त्री पुत्र कलत्र के बीच में पड़ करके आपत मनोरम प्रिय अग्नि के अंदर में प्रवेश करके और जलते हैं, ये आग लगती है ना फिर जल करके दो मिनट में खत्म करते हैं, आप वो अलग जब लगता है तीसरा नल सारा जीवन जलता है और शरीर छोड़ने के बाद में भी धड़कती जलती रहती है, जहां जाते शांति नहीं, ऐसे आग लगते हैं मौत अपराध मौत अवज्ञा। वो लोग सुने थे इस भाषण को मौत चरणों अपराध क्या होता है, शिव जी पार्वती जी को उपदेश देते हैं मौत सेवाम धर्म और विमुक्ति समुदारम दुष्टी संगी नाम, विभिन्न प्रकार मैंने भागवत में श्लोक देखा तृतीय स्कंद में मौत अवज्ञा कैसे अपराध होता है, कोई संसार दशा सबसे पहले, इसके बाद यह आग लगी, त्रिचाप जला छोटी मोटी चीज है किंतु मौत अवज्ञा मौत अपराध,
तो
रामन जी बस प्रार्थना कर रहे थे, रामन जी राज्य इनको बुला के ले आए। तो देखो गुरु से कैसे होना चाहिए, गुरु के प्रति कैसे विश्वास श्रद्धा होना चाहिए, ये करने से भक्ति होगा। तब प्रभुपाद जी भक्तिम ठाकुर जी इतने अनुगत, जैसे कहा ऐसे करा, ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं गृहस्थी कर क्यों जाऊं। भक्तिम ठाकुर जी ने देखा चलाया, ठीक है मैं इसको एक दवाई का दुकान कर दू मेडिकल का, तो एक मेडिकल का कर दी, क्यों इनके अंदर इतना योग्यता है, ये झटपट दवाई को बनाना भी बनाने का तरीका भी जानते हैं, सीख जाएगा और अच्छा प्रचार प्रसार करेगा, कभी कभी चलेगा तो कुछ भजन करेगा कुछ तो भक्तिम ठाकुर जी क्या जी जे को एक व्यवस्था धरी जीवन निर्वाह करी मुखे वाल हरी हरी यही मात्र भिक्षा चाहिए। तो ये सब भक्तिम ठाकुर ने बतलाया, तो अभी इसलिए सबको आदेश दिया कि गिरिवला बने से थाको सदा हरी बोले डाको सुख सुख बोले डाको सदा हरी बोले डाको, ये सब भक्तिम ठाकुर ने बतलाया। भक्तिम ठाकुर सबको सरल सरल उपदेश दिया, इसलिए इनको भी चेष्टा किया ऐसे करके भजन तो करेगा, किंतु दवाई की दुकान में दिया दवाई उन्होंने क्या किया, वो पहले से कैसे थे भजन करने वाला शुद्ध भक्ति के अनुसरण करने वाला आचरण करने वाला कोई व्यक्ति दिखते या कोई हरिकथा के थोड़ा इच्छुक है श्रद्धालु है उन लोगों को दवाई से दूर रहे अपना दिल को भी दे देते। उन्होंने क्या कहा कि एक एक व्यक्ति के लिए एक सौ ग्राम खन खून मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ, एक व्यक्ति को बदलने के लिए इतना चेष्टा करने पर यदि एक व्यक्ति बने तभी मैं करने को तैयार हूँ, किया भी ऐसे ही। तो उस समय दवाई दवाई दुकान दुकान सब उनका कुछ दिनों में स्वागत है। भक्तिम ठाकुर सोचते क्या करूं, ये तो सब तो बच्चे जैसे जैसे ये तो वह अनोखा है इनको लेकर के। अब भक्तिम ठाकुर मायापुर के 300 एकड़ जमीन, 100 एकड़ नहीं 300 एकड़ का मायापुर की जमींदारी पूरा भक्तिम ठाकुर जी ने गवर्नमेंट से ले लिया, खरीद लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट खरीद करके। उन्होंने सोचा इनको इन्हें झोपड़ी बना दूंगा, इन्हें भजन करके शांति पूंगी और मैं भक्तिम ठाकुर गोदरू में रहते और उनके लिए उधर कुटिया बना दी। किंतु भक्तिम ठाकुर जाते आते देखते और वहाँ प्रभुपाद भक्तिम ठाकुर जी के पास भी रहते, कभी वहाँ भी चले जाते, क्यों ये से जमीन है इसकी तो टैक्स उगाई कर सब तो मिलेगा इससे इनका चला जाएगा। और यहाँ क्या होता है भक्तिम ठाकुर जब यहाँ हरिकथा बोलते हैं प्रभुपाद अधिकांश भक्तिम ठाकुर जी के पास ही रहा करती, तो गोरखेश्वर दरबार जी महाराज कथा सुनने के लिए भक्तिम ठाकुर जी के निकट आते, ये रहते थे इस पार में और भक्तिम ठाकुर है गोदरू में। कभी कभी रात के 12 बजे आकर पहुंच गए, क्यों बोले आज कैसे है बाबा जी महाराज इतना रात को नाव कहाँ मिला, तो बोले मुझे मालूम नहीं, छोटे से एक बालक मुझे बोला भक्तिम ठाकुर बुला रहे हैं आज चलिए और हाथ पकड़ रहे तो दरवाजा छोड़ गया। और उस समय कैसे आजकल तो रास्ता घाट है आप लोगों ने तो देखा नहीं गंगा कैसे बिहार गंगा कटता था खाई बिल्कुल खाड़ा कितना 5-5, 6-6 फीट और धड़ाम धड़ाम गिरना, कितने बार नवद्वीप शहर कहाँ चला गया। और उस पर भी कभी इस पर टूटता है कभी इस पर टूटता है, इस खाई खाड़ी में अंधकार जंगल कोई बस्ती नहीं गद्रुम तक पहुंच जाती तो आपको डर नहीं लगता, तो डर किस बात का। रात के 12 बजे कैसे आए तो मेरे को आपने बुलाया, रात और दिन क्या होता है संतों के लिए, बाबूजी महाराज वहां रह जाते 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 दिन तो 10 दिन भी कथा सुनते भागवत कथा भक्तिम ठाकुर जी कथा। और भक्तिम ठाकुर जी जो श्लोक जो अनुवाद करना कीर्तन करना बाबूजी महाराज बड़े आनंद प्रभुपाद देखते निष्किंचन और दिव्य भजनशील महान। तो भक्तिम ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं उसे दीक्षा ले लूं, उसे पूछा प्रभु मुझे आप दीक्षा देंगे, तो बोले तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति और समस्त विश्व में तुम अनोखा इतना श्रेष्ठ और
उनको मैं दीक्षा दूं?
मैं अभिज्ञ मूर्ख और अंध, कोई मेरे पास में कुछ संपत्ति नहीं, मैं भक्तिम ठाकुर जी बगा तो इनकी कृपा मेरे पर में है, इनके पास में मैं आया आता हूँ और इनके साथ मेरा मित्रता है, ये मुझे ना करते हैं। भक्तिम ठाकुर जी सब समय कैसा करते, सब वैष्णव को आदर देना, सम्मान देना। वहां पर प्रसंग छूट गया, चरणदास बाबा जी, राधारमन चरणदास और रामदास बाबा जी, उन दिनों में बहुत बाबा जी लोग भक्तिम ठाकुर जी के पास आते मिलते। एक दिन की घटना है कि छात्र भक्ति कुटी में प्रभुपाद भक्तिम ठाकुर पाठ करते और वो प्रभुपाद कहीं भक्तिम ठाकुर की कार्य से कहीं गए, बोला विमला प्रसाद आज तू पाठ कर देना, छोटा है किंतु प्यारा है, सबके लिए प्यारा है। विमला प्रसाद पाठ करने बैठे, ऐसा काटने लगे, ऐसा सिद्धांत की बाण बरसाने लगे, बाबा जी और गोसाई पूरी में सब तिल मिला गए। दूसरे दिन तीसरे दिन भक्तिम ठाकुर आए, बोले ये लोग कहाँ गए, तुमने क्या क्या कहा? तो मैंने ये सब कहा, अरे ऐसा कहने से कम्बल की रुआ छाटने से एक भी मिलेगा नहीं, अरे इन लोगों को देख करके मेरे को नए नए जीवों को खींचना है, इन मोनलों को सम्मान देके बैठा करके इनके अनुचारों को खींच लेना है, वो लोग शुद्ध निर्मल है, ये तो पके हुए हुए, इनको बदल नहीं सकते, उन लोगों को मुझे बदलना है। कुछ दिनों के बाद उनके गुरुदेव भक्तिम ठाकुर जी जहाँ से दीक्षा ली, विपिन बिहारी गुस्सा नहीं आए, भक्तिम ठाकुर जी बहुत सम्मान करते, साष्टांग दंडवत किया, चरणों को धोया, आरती उतारे, पुष्पांजलि दिए, अब सब कई दिन रहते हैं उनके घर में, जिस दिन जब भी प्रणाम करते भक्तिम ठाकुर जी वो दोनों विपिन बिहारी गुस्सा दोनों पैर चरणों को उठा करके उनके सिर पर रख देते हैं। भक्तिम ठाकुर जी ये देखते रहते हैं। एक दिन जब भक्तिम ठाकुर कहीं गए, पकड़ लिया, आप जानते हैं इनको, ये कौन है, आपने जो इनको शिष्य रूप में स्वीकार किया, ये इनको आप पहचानते हैं, आप भगवान के परिकर है या भगवान के साथ आपका संबंध है, आपने भगवान को भी देखा? साधन रूप से उनके साथ बात करने लगे, करते 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 जब तत्व सिद्धांत में प्रचुर पहुंचे, सनातन शिक्षा रूप शिक्षा के अंदर पहुंचे, ये घबरा गया, तीन मिला गया, ऐसा हो गया अब ये बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे, ये चुपचाप उठकर से चले गए। करते ही भक्तिम ठाकुर आकर बोले, गुरुदेव कहाँ है, तुम्हें कुछ बोला गुरुदेव को? इनको पता हो गया भक्तिम ठाकुर को जरूरी इसने कुछ धोखा दिया है, जब से विपिन बिहारी गोस्वामी कभी नहीं आए, कभी नहीं, भक्तिम ठाकुर समझ गए, अरे वो कहाँ बैठ के कमल मंजरी और कहाँ इतना साहस कि उनके सब पर सपना पैरों को रख देना, आप इतना सामर्थ्य रखते हैं, आप ये कोई नियम है, गुरु का ये लक्षण होता है। बहुत तरह से बातें हुई जब से भक्तिम ठाकुर जी के अंदर में यह आया कि उन्होंने श्लोक सुना दी, सड़क जन्म न जाए तो शुद्र संस्कार विधि उच्च वेद पटे भविद्र ब्रह्म जाना थी सब ब्राह्मण। जब से इन लोगों ने सोचा ये एक कहां से आ गया, और गोकुर साहब बांग्ला में बोलते गोकुर साहब, गोकुर साहब ये कहां से आया, ये इतना तेज, इतना छोटा, इतना तेज प्रखर और इधर विद्वान, शास्त्र ऐसा लगता है कि उनके हाथ से लिखे हैं, ऐसा बात करते हैं। अब देखो विचार चल, वो लोग तो भीतर भीतर थोड़े दुखी है, गंभीर है, ऐसा भक्तिम ठाकुर जी अस्तित्व जन बहुत शिष्य, एक तो नहीं भक्तिम ठाकुर जी बहुत शिष्य थे। प्रभुपाद मायापुर जब आए उस समय एक बार बालिकाई में विचार सभा हुआ, क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि वैष्णव श्रेष्ठ है, और ये वैष्णवों का जो नीच जाति का वैष्णव है उन लोगों को भगवत मंदिर में सेवा अधिकार दिया जाए कि नहीं, वो लोग सेवा कर सकते हैं कि नहीं, शालिग्राम सेवा में अधिकार है कि नहीं शूद्रों को, और शालिग्राम सेवा में स्त्रियों के अधिकार है कि नहीं। आज का जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है ब्राह्मणों को छोड़ करके और बारह जाति शालिग्राम सेवा करे कर रहे हैं, इसमें उत्पात होगा, जगत ध्वंस हो जाएगा, इससे अनावृष्टि हो रहा है, जगत में महामारी फैल रहा है। भक्तिन ठाकुर जी के समय प्लेग होता था, प्लेग एक बीमारी, गांव के गांव खत्म, और ये सब महामारी होता है, अकाल वृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, ये सब हो रहा है। इसके लिए एकमात्र दोषी है यही लोग, समाज को बिगाड़ रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, और जय सती को निज जाति शुद्र होकर के दीक्षा दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार से विचार किया, और जितने ब्राह्मण थे काशी से बनारस से ब्राह्मण बुलाए, और मथुरा वृंदावन नवद्वीप धाम पुरी समस्त ब्राह्मण बुलाए, और इधर क्या किया, सब वैष्णव लोग चिंतान्वित हो गए, क्या होगा, कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, वैष्णव को बुलाया, और यदि कोई जागरण इसकी उत्तर नहीं दे सके, खंडन नहीं कर सके और जवाबदारी नहीं दिया, तो वैष्णव धर्म सदा के लिए ग्यारह फसल, बोलो तो ब्राह्मण जो डिक्लेयर कर देंगे ये सब लोग मानेंगे, और सब जीवों का अधिकार है कि नहीं है भगवान के विग्रह सेवा में, और ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, शिष्य करते हैं, किंतु शिष्य के हाथ का नहीं ग्रहण करते, खाते नहीं है, क्यों, वो शुद्र शुद्र ही रहेगा, जन्म का अभी वो रहेगा। वो लोग कहते हैं टाटी को कितना भी शुद्ध करो वो रसगुल्ला दोबारा बनेगा नहीं, रसगुल्ला टाटी हो सकता है तो टाटी रसगुल्ला बनेगा नहीं, कैसे होगा, बोलते हैं शास्त्र में लिखा कांसे को रस विधान के द्वारा सोना बनाया जा सकता है, किंतु इसके लिए उदाहरण नहीं है कि एक सूर्या को गाय बना लेंगे, कौवे को गोलू बना लेंगे, कभी संभव नहीं है। आम के पेड़ में नीम नहीं लगती, नीम के पेड़ में आम नहीं लगती, जातिगत ब्राह्मण संतान ब्राह्मण ही होता है, क्यों, उसने ऐसा कर्म किया इसलिए उसका यहाँ जन्म हुआ, वो शूद्र घर में जन्म क्यों लेगा, इसलिए जिस घर में शूद्र जन्म हुआ है इसका मतलब यही हो गया कि वो कुकर्मी है और नीच घर में जन्म हुआ, उसका भगवत श्रम कैसे अधिकार मिलेगा। इस प्रकार से हजारों प्रश्न सब तैयार करके समस्त भारतवर्ष में प्रचार कर दिया, यहाँ तक कि दक्षिण में ब्राह्मण और स्मार्ट ब्राह्मण उन लोगों को बुलाया, सब जगह से बनाया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एकत्रित कर, और सबसे बड़ा मेदिनीपुर में पाली में बड़ा मेदिनीपुर के लोग तार्किक थे। अभी मैं भी दो चार बार गया गुरु महाराज के साथ, कुछ बार जनार्दन महाराज के साथ, दस दस हजार लोग इकट्ठे होते हैं, किंतु इतना फाइल आ जाता है उसका प्रश्न का, और जब तक जवाब नहीं दे सकते हैं तब तो आपको कैसे उत्तर नहीं मिलेगा, व्यवस्था भी सब करेगा, बुलाएगा सबको, किंतु आपको जवाब देने पड़ेंगे, हमें तो बड़ा अपमान होना होगा वहाँ, और जो का भाषण देंगे उस भाषण को रिपे करेंगे, बोलो आपने क्या बताया समझ में नहीं आया, उत्तर देना है, फिर दूसरे दिन फिर मीटिंग होगा, ऐसे वहाँ होता है मीटिंग मेदिनीपुर में। तो बाली भाई ने ऐसा वैष्णव विश्व वैष्णव ब्राह्मणों ने बुलाया, उस समय प्रभुपाद अभी छोटे हैं, विमला प्रसाद इतना तो मेरे को मालूम नहीं, तो भक्तिम ठाकुर जी के बाद सब लोग आए, उस समय भक्तिम ठाकुर जी प्रचार प्रसार में एक छत्र, बट किंतु सार्वभौम हमारे जगन्नाथ दरबार जी महाराज उस समय करीब करीब 135-136 ऐसे साल उम्र है, इतना वृद्ध है, वृंदावन में से रहते थे, वृंदावन में उस समय बिल्कुल कमर झुक गया, चलने फिरने की नहीं, आंख से दिखता नहीं, किंतु किंतु वो आ नहीं सकते। गौरकिशोर दरबार जी महाराज अपने दिन ही नकिंचन मानते हैं, और मधुसूदन दरबार जी महाराज थे, भागवत दरबार जी महाराज थे, बहुत बाबा जी लोग महाराज लोग थे, कोई आने के लिए तैयार नहीं, ब्रज छोड़ गए थे। भक्तिम ठाकुर के पास खबर गया, भक्तिम ठाकुर चिंतान्वित हो गए क्या करूं, इतने में विमला प्रसाद को बुलाया, आओ, बोले ये संकट है, इसमें क्या करूं, कोई उपाय करना है तो प्रभु आपका आदेश के लिए मैं बस बैठा हूं, आप जैसा आदेश करेंगे आपके आदेश की कृपा शक्ति कार्य करेगी। बकुंठ ठाकुर जी के उस समय शरीर अस्वस्थ है, उन्होंने क्या किया, अभिनय कर ली अपना बात की बीमारी की, जरा चला फिर नहीं जाता है, मतलब मुझसे भी चला जाता और मैं चल सकता तो मैं खुद ही स्वयं जाता। किंतु ये तो अभिनय मात्र, प्रभुपाद जी की महिमा प्रकाश करना था, बस उनको भेज दिया बकुंठ ठाकुर जी ने। सब लोग देख करके बोल रहे ये क्या जवाबदारी करेगा, क्या विचार करेगा ये। उस समय राधारामन मंदिर के गोस्वामी मधुसूदन गोस्वामी वहां पर वैष्णवों की तरफ से वृंदावन से पहुंचे थे, और प्रभुपाद को देख करके बकुंठ ठाकुर जी के परिचय थे, बहुत प्रीति होने बैठे। अब एक तरफ तो हजार ब्राह्मण, एक तरफ इन्हें गिने दो चार वैष्णव, अपरूपात बालक, सभा मंडप में चारों तरफ फूलों की मंडप बनाया गया। जैसे ही प्रवेश करने लगे एक गुच्छा फूल गिर पड़ा, बहुत वैष्णव लोग जयकार देने लगे, महाप्रभु जी की हरि बोल करने लगे, महामंत्र कीर्तन करने लगे, निश्चित वैष्णवों की विजय होगा और यही वैष्णव विजय करेगा।